नियमसार कारण कार्य नियम लेक्चर नंबर 324. ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ॐ शुद्धात्मने नमः नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयरियाणम् नमो वच्छायाणम् नमो लोये सौवसाहूणम् नमिऊणजिनम् वीरम् अनन्तवर्णानदं शणसहावं वोच्छामि नियमसारं केवली सुद केवली वणिदम्। आचार्य श्री कुनकुन भगवान द्वारा रचित यह नियमसार नामक ग्रंथ है, उस पर पद्म प्रभमलधारी देव ने तात्पर्य वृत्ति टीका लिखी हुई है। इन पर गुरुदेव श्री कांजी स्वामी के जो प्रवचन हुए हैं वो कारण कार्य नियम पुस्तक रूप से अपने हाथ में है और ये अभी अपनी पांचवी पुस्तक चल रही है। उसके पृष्ठ संख्या 118 पर हम आ गए। बहुत दिन हो गए ना, 20 दिन का गैप हो गया। तो अभी हम ये जो श्लोक नंबर 209 को पढ़ रहे थे और ये 209 में हमने श्लोक में ये देखा था, देखो पेज नंबर 114 में देखते हैं, केवल श्लोकार्थ देखते हैं कि योनिमा सुख ने दुख सुकृत ने दुष्कृत ना समूते थाई छे। योनि में जिस भव में गया उसकी बात है, चार ही गतियों में मिला। मनीषा बेन 114 पेज पर हम श्लोकार्थ देख रहे थे, सेकंड लाइन वही बीजी रीते એટલે નિશ્ચય ને આત્માને શુભનો પણ અભાવ છે તેમજ અશુભ પરિણતિ પણ નથી, એને નથી અને નથી। ક્યું કિસ નહીં છે, શુદ્ધ નહીં છે, આત્મા મેં રાગાદી હૈ હી નહીં, ક્યુંકી આત્મા કહેને છે કેવલ સ્વભાવ ભાવ લેના હૈ વહાં પર, કારણ કે આ લોકમાં એક આત્માને, એક આત્મા કહે ને, અને આત્મા સદા એક રૂપ હોવાથી તેને चौक्स भवनों परिचय बिल्कुल नहीं। वो भव उससे जुदा है, वो पर्याय में है, वो भव संबंधी उसके शुभ शुभ भाव है, सब कुछ है, पर आत्मा में वो नहीं है। आ रीते जे भवगुणों ना समूहती संन्यस्त छे। भवगुण क्या है? जिनके कारण वो भव चलता रहे, शुभ शुभ परिणाम है, राग द्वेष वगैरह, ये जो भव के गुण, गुण कहने से यहाँ विभाव पर्याय को लेना। हमने अभी तक देखा है पर्याय को गुण कहने की पद्धति तो यहाँ सर्वत्र है ही है, तो उससे वो संन्यस्त है, उससे रहित है। तेने एटले नित्य शुद्ध आत्मा ने हूँ स्तवूँ छू, यानी अपना जो कारण परमात्मा है, स्वभाव भाव है, उसको स्तवूँ छू कहो तो उसमें एकाग्र हो जाता हूँ, ये उसका अर्थ है। अब इसकी बात अपनी चल रही थी, कौन से कहां पर अर्थात रहित छे, मैंने पढ़ा तो रहित, वहां सहित हो गया है, उससे संन्यस्त है ना, रहित छे, र कर देना। उन्होंने फिर अपर्याप्त भवों की बात वहां उठाई थी एक अंतर्मूर्त में कितने वगैरह वगैरह, यानी पर्याय में होने पर द्रव्य स्वभाव में नहीं है, इसलिए उसकी दृष्टि कर यानी उसमें मैंपना स्थापित कर, ये उसका अर्थ होता है। अभी हम 118 पेज पर आते हैं। कहे छे के आ सुख दुख जे ते अनंतवार अने अनंत काल वेद्या, क्योंकि अनादि से क्या करता आया है, एक एक भव में गया, शुभ शुभ भाव किए और उसके फलस्वरूप जो सुख दुख भोगता रहा, देखिए अनंतवार और अनंत काल में यही किया वेद्या, एनु कारण तो तारा शुभ शुभ भाव छे। लोग कहते अरे रे कर्म के कारण में ऐसा हो रहा है, कर्म मुझे सता रहे, कर्म कैसे आखिरे कर्म है, अरे पर ये तेरे शुभाशुभ भावों का फल है। शुभ भाव या अशुभ भाव जिस समय कर रहे हैं उस समय वो राग को तो वेद रहा ही रहा है, तो उसके फल स्वरूप और जो कोई संयोग बनते हैं वहां पर भी नए राग द्वेष करके उसी में दुखी होता रहता है। एनु कारण द्रव्य नहीं, द्रव्य ने स्वभाव उसका कारण नहीं है, क्योंकि स्वभाव में राग है ही नहीं है। इशू आछे द्रव्य ने पर्याय ने, आहा अभी जिसको ये मालूम नहीं द्रव्य क्या है पर्याय क्या है और मैं कौन हूं। भगवान तारू स्वरूप द्रव्य रूपे छे, पर्याय रूपे पण छे, प्रमाण नो विषय, क्या कहते हैं प्रमाण यानी जो सम्यक ज्ञानम प्रमाण है, तो ज्ञान का विषय, प्रमाण का विषय नहीं ज्ञान, क्योंकि ये आत्मा को जानने वाला ज्ञान प्रमाण ज्ञान है, तो उसका विषय क्या है, द्रव्य पर्याय सब कुछ है। प्रमाण नो विषय द्रव्य ने पर्याय बेचे, ऐसा नहीं मानेंगे तो अनुभव तो पर्याय में हो रहा है, अतीन्द्रिय आनंद पर्याय में हुआ, सम्यक दर्शन हुआ, सम्यक ज्ञान हुआ, तो ये तो पर्याय में हुआ, तो वो तो प्रमाण ने द्रव्य को भी जाना पर्याय को भी जाना, उसको प्रमाण ज्ञान कहेंगे। और जो अकेले लिखा है पढ़ेंगे और अकेले द्रव्य को विषय करने वाला या अकेले पर्याय, वो नए ज्ञान हो गया, समझ में। तो कहते शुद्ध निश्चय नो विषय एकलु द्रव्य, देखो ये नय का विषय है, एकलु द्रव्य जो शुद्ध नय का विषय है, एकलु द्रव्य उसको सम्यक दर्शन ने विषय बनाया। सम्यक दर्शन का विषय एक ही है, जो शुद्ध नय ने जो विषय बताया है उसको सम्यक दर्शन ने पूरा का पूरा, उसमें नय नहीं होते, सम्यक दर्शन है ना, बस उसका विषय एक ही, कौन सा, मैं, कौन सा मैं, जो शुद्ध नय ने बताया वो। ज्ञान में शुद्ध नय अशुद्ध नय या व्यवहार नय वो सब कुछ लागू होगा, परंतु दर्शन में बस एक दृष्टि का विषय जिसको हम कहेंगे। तो कहते शुद्ध नयनो शुद्ध निश्चय नो विषय एकलु द्रव्य, तेमा शुभाशुभ पर्याय नो विषय नथी, पर्याय मात्र को यहाँ नियम सार में तो वो क्षायिक पर्याय को भी जुदी रखी है ना, पर्याय नो विषय जोवे त्यारे शुभाशुभ भाव थाय, आहा हा विषय शू ने नय शू, आहा हा, यानी इसके अभी पता नहीं है विषय किसको कहना, नहीं किसको कहना, प्रमाण क्या होता है, और वो अभी सुनने बैठा तो उसको क्या समझ में आवे, समझ में आती है ना, क्योंकि द्रव्य गुण पर्याय का तो ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि उसी में सभी बातें बताई जाती है। पहली बात करी सुख दुख ने भोगवा माटे अनंतवार जीवे शुभ ने अशुभ कर्या, पण पांचो कहूं प्रभु तारे शुभ अशुभ रहित थवू हो तो द्रव्य छे मां शुभ अशुभ छे नहीं, वस्तु पड़ी छे। देखो शुभ अशुभ रहित थवू होय तो एने पर्याय में शुभ अशुभ रहित होना है, तो क्या उपाय क्या है, तो द्रव्य ने मैं जो शुभ अशुभ रहित हूं उसका लक्ष्य करके उसी में एकाग्र होना है। तो कहते तो द्रव्य छे एमां शुभ अशुभ छे नहीं, वस्तु पड़ी छे भगवान सनातन सत हयाती वाली सत्ता चीज छे आत्मा, क्या कहते हैं पड़ी छे ने अनादि से वो है और है। देखो पर्याय एक तो अंश है, पूरा द्रव्य द्रव्य गुण पर्यायत्मक जो पूरा द्रव्य है वस्तु है, उसमें पर्याय तो उसका एक अंश है और वो क्षणिक है, एक समय पूर्ता है, फिर भी हमारी भूल कहाँ हुई, पूरा अखंड अभेद जो द्रव्य स्वभाव है उसका तो लक्ष्य कभी उसके सोचा भी नहीं है, स्वीकार ही नहीं है, पर्याय अंश जितना अपने को मानता है और वो अंश ने पर्याय तो हीनाधिक होती है शुभ शुभ होती है, तो उस अपने को उस रूप मानकर दुखी हो रहा है, फिर मेरा नाश हुआ, अरे मैं इतना हीन वाला, मैं क्रोधी वाला, मैं ये सब बातें चलती है, अर्पण वो मैं पूरा का पूरा मैं जो पीछे पड़ा है उसका कभी लक्ष्य ही नहीं किया है न? तो क्या कहते कि ये वस्तु पड़ी छे भगवान सनातन सत, सनातन क्योंकि अनादि से वहां पड़ी है, पड़ी है ना, वो है विद्यमान, हयाती वाली सत्ता, पेज नंबर 118 सेकंड पैराग्राफ, एवी चीज छे आत्मा, એનો જ્ઞાન અને આનંદ આદિ ત્રિકાળ સ્વભાવ છે, વો તો ઉસમે તો અનંત ગુણ હૈ. તો જ્ઞાન આનંદ મુખ્ય રૂપ સે લે લીએ, ઓર વો કૈસા, વો ત્રિકાળ સ્વભાવ હૈ, ઉસકા સ્વભાવ તો અનાદિ સે વૈસા કા વૈસા હૈ. એ દ્રવ્ય અને ગુણ તો, અને દ્રવ્ય તો વહી કા વહી, વો ઉસકી સારે અનંત ગુણ વહાં વિદ્યમાન હૈ. ભવની પર્યાયના શુભાશુભ કારણો તેને તે અડ્યો પણ નથી. ક્યા કહેતે હૈ, એ જો ભવ કે કારણભૂત જો પરિણામ હૈ, કોનસે શુભાશુભ ભાવ, તો વો તો સ્વભાવમાં હૈ હી નહીં હૈ. તો કહેતે એને અડ્યો નથી, ઉસકો સ્પર્શ તક નહીં ક્યા, સ્પર્શ તક એને વો બિલકુલ ભિન્ન હૈ, એ કહેના ચાહતે. એમ કહેવાનો આશય એમ છે કે એવા ભવ તે કર્યા, એ જો હવે ન કરવા હોય તો. કિતને ભવ કિયે, તો હમને તો ભવ પરાવર્તન વગેરે દેખ, કિતને કિતને ક્યા ક્યા કિયા, અનંત 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 અનંત, ક્યોંકિ પહેલે કોઈ આદિ હિ નહીં હૈ, તો કિતના ભી પીછે ચલે જાઓ, અનંત કાલ ભી પહેલે ચલે જાઓ, તો ઉસકે ભી પહેલે હમ એસા હી કહેંગે, અનાદિ સે અનાદિ સે. તો કહેતે અભી વો નહીં કરના હૈ, તો દ્રવ્ય ઉપર દૃષ્ટિ દે કે જેમાં ભવ નથી. દ્રવ્ય ઉપર દૃષ્ટિ દે કા અર્થ ક્યા હૈ, કેવલ ઉસકો જાનતા રહે એસા નહીં, ઉસમે મેપના સ્થાપિત કરના હૈ. ક્યોંકિ દૃષ્ટિ સ્વ પર હોને પર ભી જ્ઞાન મેં તો વો તો રેગ્યુલર ઉસકા જો કુછ રૂટીન જીવન ચલ રહા હૈ, ઉસકે દૃષ્ટિ તો કાયમ રહેગી. ઉસકો દ્રવ્ય દૃષ્ટિ રહેતે હુએ ભલે વો જ્ઞાન મેં વો તો વેપાર ધંધા કરેગા, કોઈ અન્ય ચીજે કરેગી, સ્વાધ્યાય કરેગા, યાને પરલક્ષી જ્ઞાન મેં ભી દૃષ્ટિ ઉસકી કાયમ હૈ. દૃષ્ટિ અને જાનતે રહેના, અપને મેં સ્થિર રહેના, ઉસકો દૃષ્ટિ નહીં કહા, વો સ્થિર રહેને વાલી બાત શુદ્ધ ઉપયોગ મેં હોગી, પરંતુ પરિણતિ મેં તો એ તો ઉસકી દૃષ્ટિ ભી, ઉસકા સમય જ્ઞાન ભી, ઓર જીતની વિતરાગતા રૂપ અંશ હૈ ચારિત્ર કા, વો સભી ચાલુ રહેતે હૈ. સમજ મેં બાત, ઓર કભી કભી અંતરંગ મેં સ્થિરતા હોગી, તબ હમ ઉસકો શુદ્ધ ઉપયોગ કહેંગે. યહાં ક્યા કહેતે હૈ, દેખો દૃષ્ટિ હૈ ને, દ્રવ્ય ઉપર દૃષ્ટિ દે કે જેમાં ભવ નથી, એને સ્વભાવમાં ભવ નહીં હૈ, ઓર ભવ કે કારણ નહીં હૈ. ભવ કે કારણ ક્યા હોતે હૈ, શુભાશુભ. હા, સમજાય છે ભાઈ, એવી આ જુદી જાત છે. ત્યાં અમદાવાદમાં કોઈ દી સાંભળ્યું નથી, બહુ ફેરફાર થઈ ગયો છે. અમને તો ખબર છે, અહીં 91 વર્ષ થયા, 70 વર્ષથી તો આ માંડી છે. અરે રે, આ વસ્તુ ક્યાં રહી ગઈ. इसका अर्थ क्या, 70 वर्ष थी तो आ मांडी चे. चालू क्या, अरे रे, उन्होंने दीक्षा कौन सी ईयर में ली, हाँ 23. अच्छा, उसके पहले से उनके स्वाध्याय में यानी उसकी रुचि तो इसी बाजू थी. હા ના, નેચરલી જબ પરિવર્તન ક્યા તબ. હા, અરે રે, આ વસ્તુ ક્યાં રહી ગઈ. અને અંદર સે વો જિજ્ઞાસા ઝંખના જો ચલ રહી થી કે જો સત્ય જાનને કે પ્રતિ, ઉસકી પૂર્વ ભૂમિકા મેં ભી વૈસી પાત્રતા તો હોગી વહાં પર. દૃષ્ટિ હોના અલગ બાત હૈ, ઓર ઉસ સંબંધી ઉસકી જો, હા, આ વસ્તુ ક્યાં રહી ગઈ. સત્ય ભગવાન ત્રણ લોકના નાથ તીર્થંકરોએ મૂળ તત્વ કહ્યું એ મૂકીને બીજી બધી વાત અહીં ન કીધું કે શુભાશુભ ભાવથી સુકૃત દુષ્કૃતથી સુખ દુઃખ થશે. સુકૃત એને એમ કહીએ ભાવ, એની આ ક્રિયા કૃત લીખા ને, જીસકો હા સુકૃત દુષ્કૃત, એને વો હમ જીસકો પુણ્ય પાપી કહેને મેં આતા હૈ, વો તો પરિણામ કે સાથ ક્રિયા કો ભી જોડ સકતે હમ ઉસકો સુકૃત દુષ્કૃત કે કહેતે. હવે એનો અર્થ શું થયો કે જે કાંઈ તારા શુભ દયાદાન વ્રતભક્તિ પૂજા એ સુકૃત, આ ભગવાનના દર્શન ગમે તે જાત્રા કરે એ શુભનું ફળ શુભ આવશે. ક્યોંકિ વો શુભભાવ સહિત હૈ, અકેલા શુભભાવ નહીં લ્યા, વો ઉસકી ક્રિયા ભી લી, ઇસલિયે સબ સુકૃત મેં આ ગયે. હા હા, સાંસારિક અનુકૂળ સુખ મળશે, રખડવાનું ત્યાં રહેશે. ક્યાં કહેતે હૈ, ये सांसारिक सुख मिलेगा परंतु वो तो रखड़वाने का रखड़ने का रास्ता है। हवे एमां तारे रखड़वू मटाड़वू होय प्रभु तो तारो आत्मा जे अंदर छे एमां शुभाशुभ नो अभाव छे। लोगों की क्या बात है, अरे अशुभ है ना वो राग क्रोधादि हो रहे उसको कम करो, शुभ भाव की भी नहीं सुकृत की प्रेरणा दी जाती है, रोज ऐसा करो वैसा करो, ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए, परंतु इन भावों से रहित मैं स्वयं जो स्वभाव भाव हूँ उसका कभी विचार नहीं किया। और पूरा सारा उपदेश कहो और सारी जो एक दूसरे के साथ जो हम देखा देखी क्या करते हैं तो सारे पर्याय के सुकृत दुष्कृत की बात है, उसके भले वो परिणाम के साथ भी हो। यहाँ क्या कहते हैं तो ये तो रखड़ने का ही रास्ता है, भले कितने भी अशुभ कम किए शुभ में लगा रहा फिर भी वो क्या है, संसार का कारण है। उसका फल मिलेगा पर क्या फल मिलेगा, रखड़ना मिलेगा। हवे एमा तारे रखड़वू मटाड़वू हो तो तारो आत्मा जे अंदर छे एमा शुभाशुभ नो अभाव छे। आत्मा है और वो परिपूर्ण है, पूरा का पूरा है और अनादि से वैसा का वैसा एक सदृश भाव कायम है, उसमें कोई शुभाशुभ नहीं है। अब उसको स्वीकार करके उसमें एकाग्र हो जाए ज्ञान अपना और वही मैं हूँ ऐसे हमने उसको स्वीकार करेंगे तो वो रखड़ने वाले जो भाव है शुभाशुभ वो हीन होते होते वीतरागता बढ़ेगी और इसको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। आ लोकमा आहा हा, एक आत्मा ने, एक आत्मा कहने से एक रूप आत्मा लिया, एक स्वरूपे भगवान अंदर चैतन्य ध्रुव नित्यानंद प्रभु। देखो चैतन्यमय है, ज्ञान दर्शन में है और कैसे ध्रुव है, कायम रहने वाली चीज है और नित्य आनंद स्वरूप है। सहजानंद प्रभु अंदर छे, वो सहज है, वहां कोई कृत्रिमता नहीं है, कोई खिंचातानी नहीं है, उसका स्वरूप ही ऐसा है, ज्ञान और आनंदमय है, वो नित्य है। एने चौक्कस भवनों परिचय बिल्कुल नथी, स्वभाव में उसका कोई गंध तक नहीं उसकी, उसका अर्थ क्या है, इससे तो जुदा है स्वभाव। पर्याय में ये जो कुछ हीना दिखता हो रही शुभाशुभ हो रहा है उसके फल स्वरूप जो कुछ बातें बन रही है, परंतु स्वभाव उससे बिल्कुल निराला जुदा है, उस समय भी उससे जुदा है। आवी वात पन काने पड़वी मुश्किल पड़े, क्या कहा, ये सुनने को मिलना अत्यंत दुर्लभ है और सुनने पर समझना तो वो बात अलग है। बीजे क्या छे, यानी अन्य धर्मियों में क्या बात बताई थी, क्या कहा वहां वहां क्या उपदेश मिलता है, दया पाड़ो, आम करो तेम करो, व्रत पाड़ो, पंच महाव्रत पाड़ो ने एवी बधी वातों, यानी वो तो पंच महाव्रत तो जैनियों में है दिगंबरों में है, फिर भी उपदेश कितना, बस पंच महाव्रत पालो। और वो मान्यता में क्या, हम बढ़ गए मोक्ष मार्ग पर है, हम अभी मुनि अवस्था में पहुंच गए। ए सम्यक दर्शन विनाथ होता, क्या कहा, अरे मोक्ष मार्ग में तो ये सब हो गए परंतु वो सम्यक दर्शन और वितरागता सहित बाह्य में ऐसी जो अवस्थाएं होती है परंतु मात्र बाह्य अवस्थाओं धारण किए व्रतादि पालन किए और अंतरंग में स्वभाव का कुछ स्वीकार ही नहीं है, उसके कोई मालूमात ही नहीं है, तो थोथा इन्हें क्या, उसके बिना वो सब बेकार की बात। चार गतिमा रखड़वानु फले, देखो ये आता ना अनंतवार मुनिवृद्धार, कैसे द्रव्यलिंग धारण करके अनंतवार ग्रहवेग तक उपजने जितना उसने बिल्कुल मंदता थी उसके इराक की भी, द्रव्यलिंग तो बाहर में धारण किया था मिथ्यात्व अवस्था में है और उसने तो शुक्ल लेशा में वो वहां चला जाएगा, बिना शुक्ल लेशा के वहां की आयु भी नहीं बंधेगी, यानी शुक्ल लेशा है उत्तम सहनन है वगैरह वगैरह सब कंडीशन है तभी तो ग्रहवेग में जा सकता है, ऐसा भी जीव ने अनंतवार किया। और जब जब मनुष्य हुआ तब तब द्रव्यलिंगी थोड़े ही होगा, अरे मनुष्य होने पर तो इधर उधर भटकने के उसके चलते है, अभी हम अपनी ओर देखते हैं तो क्या कितने भाव किसको क्या आते हैं, तो फिर भी तो मनुष्य पर ना मिलना ही इटसेल्फ दुर्लभ है, क्योंकि अनंत काल जाने पर फिर मनुष्य पर्याय में मनुष्यायु बांधता है उसकी, क्योंकि एक बार मनुष्यायु बांधी हो सकता है फिर दोबारा तीर्यंच आयु वगैरह बांधते बांधते एक इंद्रिय में पहुंच गया तो अनंत काल तक तो वो असंख्यात पुद्गल परावर्तन के बाद मनुष्य में आ सकता है। और जो त्रस पर्याय में मनुष्यों के बहुत थोड़े हैं अन्य तिरियंचों आदि की अपेक्षा से। अब यहाँ कहते हैं चौक्कस भवनों परिचय बिल्कुल नहीं, प्रभु तारे जो भव रहित थव हो आवा भव कर्या, हा हा एक अंतर्मूतमा केटला श्वास हशे, ये क्यांक लख्यू से मगज में आयु नहीं। किसी ने कहा 3385, हमने देखा ना एक श्वास में 18 10 12 18 बार, तो उसमें हमने 66,336 को 18 से भाग दिए थे तो 3685.3333 आया था, वही तो 3385 हमने लिख के रखा था यहाँ पर। हाँ उत्तर, श्वास क्या छे, इन्हें कहाँ लिखा है कुछ, तो कहते हेमंत भाई ये हिसाब करीने काढ़ू। हेमंत भाई ये शू, हेमंत भाई ये हिसाब करीने काढ़ू। उत्तर, चोपड़ी काढ़ी मुमुक्षु कहते हेमंत भाई हिसाब करीने काढ़े छे एम कहे छे। एम क्या हेमंत भाई, कया हेमंत भाई, क्या ने कया हेमंत भाई, मुमुक्षु आपनो हेमंत गांधी, आपनो हेमंत, हाँ ये छे खरो, ये मगज वालो छे, विचार बहु करे छे, वाचन बहु करे छे हो, ते केदी काढ्यु हतुं हमणा, हाँ हशे एने वाचन छे। हेमंत भाई नी 26-27 वर्षनी उमर छे, मासिक 700 नो पगार छे, मुंबई बैंक मां हतो छोड़ी दीधु, 800 पगार थवानो हतो, 2 वर्ष में 1,000 થવાનો હતો છોડી દીધું, બાળ બ્રહ્મચારી જાવત જીવ રહેવું છે એને છોડી દીધું, વિચાર સારો કર્યો, હા હા ઉસ સમય વો 26-27 સાલ કે થે જબ સ્વામીજી ગયે તબી, એક શ્વાસમાં 18 ભવ, આહા હા એ શ્વાસ એમાં 18 ભવ કરે, લસણ ડુંગળીને લીલફૂગ, લીલફૂગ સમજતે ને, સેવાળ સેવાળ પાણી ઉપર લીલ, હે આયા પાણી ઉપર લીલફૂગ હોય ને એમાં એક કટકીમાં અસંખ્ય શરીર છે, દેખો ઉનકે અવગાહના ઇતની છોટી હોતી કે એસા હમકો એક કટકી જૈસે એક જો ગ્રીનિશ જૈસના એક ટુકડા દિખતા હૈ ઉસમેં અસંખ્ય શરીર, લસણની એક રાય જેટલી કટકી લ્યો તો એમાં અસંખ્ય તો શરીર છે, એને નિગોત કે શરીર, અને એક શરીરમાં અત્યાર સુધી સિદ્ધ થયા 6 મહિના ને 8 સમયમાં 608 સિદ્ધ થયા, એટલી સંખ્યા જે સિદ્ધ થઈ અત્યાર સુધી એથી અનંત ગુણા એક શરીરમાં જીવ છે, એસે અસંખ્ય શરીર વો ઇતને ઇતને રાઈ જીતને કટકી મેં, કોણ માન્યા, અભી ઉસકો કોણ સ્વીકાર કરેગા, પૂછતા કિસને દેખા, હે ના એસે પૂછતા, લસણની રાય જેટલી કટકી લ્યો તો એમાં અસંખ્ય શરીર, અને એક શરીરમાં અત્યાર સુધી સિદ્ધ થયા એથી અનંત ગુણા જીવ છે, હા હા વિતરાગની વાતો કેવળી, ત્રણ કાળ ત્રણ લોક જોવે, એ વિતરાગની વાતો કે બાદ એક ફૂલ સ્ટોપ દેના, વિતરાગની વાતો કેવળી ત્રણ કાળ ત્રણ લોક જોવે, ત્રણ લોક કહેને છે અલોક સહિત સમજના, સિમંદર ભગવાન તો તીર્થંકર છે, કેવળી તીર્થંકર છે, બીજા સામાન્ય તીર્થંકર લાખો કેવળી મહાવિધેય ક્ષેત્રમાં બિરાજે છે, કે 13 ગુણસ્થાન કી જો સંખ્યા હે મેક્ઝિમમ લાખો મેં હોતી ને વો 8 લાખ કુછ આતી ને, હા 8 લાખ, બધા એ તો મેક્ઝિમમ પોસિબિલિટી બતાતે, બધા ભગવાનોનું આ કથન છે, હા હા અનંતા તીર્થંકરો થયા થાય અને થશે એ બધાનું આ કથન છે, દેખો એ 13 ગુણસ્થાન જો હૈ ઉસકો કહેંગે નિરંતર માર્ગણા, સમજતે ને નિરંતર સાંતર ક્યા હોતા હૈ, કોણ કોણ સે ગુણસ્થાન હૈ જિસમે અંતર પડ સકતા હૈ, નાના જીવન કી અપેક્ષા બાત બતાની આપ બોલો, यानी उसमें कोई जीव नहीं ऐसे को ऐसे भी गुणस्थान होते हैं, और कोई गुणस्थान ऐसे उसमें हमेशा ही जीव होगे, अच्छा आप हमेशा कौन कौन से गुणस्थान में जीव होगे कहना चाहते तो बताओ, अरे अरे जरा अरविंद भाई को बुलाए, हाँ पहला अरे नो प्रॉम्प्टिंग. हाँ हाँ, चार पाँच छः सात तेरह और हाँ बराबर है. हमने गुणस्थानों की बात पूछी थी आपको, क्योंकि मार्गणा गुणस्थान तो हम चौदवा नहीं, क्योंकि देखो हर समय उसमें कोई जीव रहेगा तो कितने जीव हो जाएगा. एक एक समय में अगर एक एक जीव भी जाएगा तो कितने असंख्या जीव जाएंगे छह महीने आठ समय में. ख्याल में आई ना बात. हाँ बाकी सब शांतर मार्गण है, दूसरा गुणस्थान है, तीसरा गुणस्थान है. उसमें ऐसा होता है एक समय से लेकर पल्ले के असंख्यात भाग प्रमाण काल तक कोई जीव न हो ये बन सकता, इतना ही काल तीसरे वाले का भी अंतर पड़ सकता. इसको अंतर कहते हैं. कितने नाना जीवों की अपेक्षा अंतर है, एक जीव की अपेक्षा नहीं बात कर रहे हैं, नाना जीवों की अपेक्षा. एक जीव की अपेक्षा कहना है तो वो फिर दोबारा उस गुणस्थान में जब आएगा तो उसको अंतर कहेंगे, वो बात नहीं चल रही. यह नाना जीवों की अपेक्षा बात चल रही है. यानी यहाँ केवल ज्ञानी जो है तेरहवें गुणस्थान वाले, उनका कभी भी अभाव नहीं हुआ. लाखों केवली तो रहेंगे ही रहेंगे, तीर्थंकर भी हमेशा रहेंगे. ऐसा कोई काल नहीं कि अभी कोई भी कहीं पर भी तीर्थंकर न हो, अब कभी बन ही नहीं सकता है. यानी जिन धर्म का उपदेश देने वाले भी हमेशा रहेंगे, और उसके जो चौथे पांचवें छठे सातवें गुणस्थान वाले भी हमेशा रहेंगे. यानी इसका लोप हो जाएगा, हम कैसा कह रहे हैं, हम हमारी जिम्मेदारी अभी इसको संभालने की. अरे तुम्हारा क्या होगा ये सोचना पहले. वो बताने वाले भी हमेशा रहेंगे, वो फॉलो करने वाले भी समय दृष्टि भी रहेंगे. अगर हम इसको नहीं समझेंगे तो हमारा क्या होगा, बस इसकी सोचनी है. लोगों को क्या लगता है, नहीं हम इसको बचाएंगे तो वो बचेगा, ऐसी बात नहीं है. हाँ वो जो यहाँ जो ह्रास हो रहा है कहेंगे तो ऐसे विकल्प आएंगे, पर हमारे विकल्प आने से ये बात रह जाएगी ये भी बात नहीं है. वो तो सहज रूप से जो होना है वो होगा. हाँ देखो ये तो हो गया ना, इनका कथन है. चौकस भवनों परिचय बिल्कुल न थी. किसको? स्वभाव को. चौकस यानी बिल्कुल नहीं, नक्की बता रहे. तारे भव रहित थवू होए प्रभु तो ये वस्तु छे एमा भव नथी. वस्तु कौन है? तू स्वयं है और उसमें भव नहीं है, और पर्याय में है, और पर्याय में ही वेदन कर रहा है तू. किसका? राग द्वेष करके सुख दुख का वेदन पर्याय में हो रहा है. चौक्कस कहिए छे, चौक्कस इतले बिल्कुल. आहा हा, ज्ञायक स्वरूप जे अंदर चिदानंद ध्रुव नित्यानंद प्रभु एने भव केवा. ए तो पर्याय अवस्था दशा पलटन एमा भव छे. ए पर्याय एमा नथी, क्योंकि हमने पर्याय और वो स्वभाव भाव ऐसे हमने नय की अपेक्षा उसको जुदा जुदा करके जाना है, उसमें भव नहीं है. चौक्कस भवनो परिचय बिल्कुल नथी. आ रीते जे भवगुणोना समूहती संन्यस्त छे, भवना गुणों थी जेने त्याग छे. संन्यासम के संन्यास लिया, यानी क्या है, सबको त्याग करके चला गया, तो उससे संन्यस्त है, उससे रहित है. भवना गुणों थी जेने त्याग छे तेने, तेने एटले कोने? नित्य शुद्ध आत्मा ने. यानी स्वभाव जो हमने जिसको आत्मा कहा उसको, एवो जे आत्मा शू कहूं के जेने भवना रखड़वाना गुणों, ये गुण कहने से उनकी पर्याय समझना. विभाव एनो असंख्य समूह. देखो क्या कहते हैं, क्योंकि शुभा शुभ भाव है तो शुभ भाव भी असंख्य प्रकार के और अशुभ भाव भी असंख्य प्रकार के. एनो असंख्य समूह, शुभ असंख्य ने अशुभ असंख्य एनो ढगलो. अभी हम भी एक दूसरे से जो कंपैरिजन करेंगे, अपने आप को देखते हैं तो हमने पहले कितने अशुभ भाव किए, अभी हाँ अभी अच्छा है, हम शुभ में आ गए. अशुभ के भी असंख्य प्रकार और शुभ के भी असंख्य प्रकार. ए तो बधु अनंतवार करियु एनो संन्यस्त छे, ए वस्तु मा एनो त्याग छे. यानी वस्तु में वो है ही नहीं है. पूर्णानंद नो नाथ प्रभु, कब? जिस समय पर्याय में इतने अशुभ भाव और तीव्र राग आदि भी चलते होंगे या शुभ भी हो चलता, उसी समय वस्तु जो है कैसा है, पूर्णानंद नो नाथ, द्रव्य स्वभाव, वस्तु स्वभाव, ये तो शुभाशुभ भाव, ये तो भवना गुणों छे बापा, हा हा, ये भवना गुणों ना समूह थी त्यागी छे, आ तो बाहर ना बाईडी छोकरा छोड़ी ने बेसे एटले त्यागी साधु थई गया, पण आ अंदर भवना भाव विनानु तत्व छे। देखो जिस समय वो उसके पर्याय में है उस समय भी वो उससे रहित ही है, ये कहना चाहते हैं। मैंने वो रहित होने की बात नहीं लिया उस, देखो देखो, पण अंदर आ अंदर भवना भाव विनानु तत्व छे, एनी दृष्टि विना अने उसको स्वीकार किए बिना, बस पर्याय में हमने ये छोड़ा वो छोड़ा वो छोड़ा, अभी हम ऐसा कर रहे हैं उसे, तो पर्याय पर्याय की बात है, उसमें तो स्वभाव की बात ही नहीं आ रही है। तो कहते हैं कि एनी दृष्टि विना भवनो अभाव त्रण काल मां नहीं थाय, जेमा भव नथी, भवनो जेने बिल्कुल परिचय नथी, एवं जे द्रव्य छे एनी दृष्टि अने अनुभव विना भव मर्शे नहीं। क्या कहते हैं, जो स्वभाव है वो स्वभाव में तो भव है ही नहीं, और स्वभाव में भव नहीं है। देखो क्या कहते हैं, पहले में पहले बाहर में त्यागी हो गए, परंतु अंदर में जो स्वभाव भाव है वो स्वभाव कैसा है, इनसे रहित ही है, वो अनादि से उससे त्याग स्वरूप ही है, उसमें ना भव है ना भव के भाव है। तो कहते भवना भाव विनानु तत्व छे, एनी दृष्टि विना, उसकी दृष्टि किए बिना, दृष्टि का अर्थ क्या देखा था हमने, उसमें स्वपना स्थापित करना, उसका स्वीकार, शुद्ध नय ने जिस स्वभाव को बताया है उसको जानकर उस रूप में हूं ऐसा स्वीकार करना, उसको दृष्टि कहेंगे। एनी दृष्टि बिना भवनो अभाव त्रण काल मां नहीं थाय। देखो यहाँ विषय ये चल रहा है कि जीव अनादि से है और अनादि से उसने शुभाशुभ भाव किए और उसके फलस्वरूप सुख दुख का ही अनुभव किया, यानी उसके चारों गति में ये रखड़ रहा है, शुभ भी किए उसका भी फल क्या मिला, संयोगों में कुछ अनुकूलताएं मिली जिसमें उसने सुख मान लिया, अशुभ के फलस्वरूप संयोगों में प्रतिकूलता उसमें दुख मान लिया, तो इसने उसके सिवा और कुछ नहीं किया है। परंतु उसी समय ये जो त्रिकाली जिसको हम स्वभाव भाव कहते हैं, वो पर्याय के जहाँ पर्याय वहीं पर है ना, उससे तो उसके प्रदेश भी इस तरह से वो क्षेत्र भी उतना ही है उसका, जो द्रव्य का क्षेत्र है वही गुण का है और वही पर्याय का है। परंतु हम यहाँ नय की अपेक्षा जो ज्ञान ने शुद्धने ने जो बताया स्वभाव भाव, अगर हम कंसिडर करेंगे तो स्वभाव में राग नहीं है, यहाँ कहते स्वभाव को तो भव का परिचय भी नहीं है और भव के भाव भी उसमें नहीं है, तो उपाय क्या है इससे रहित होने का, तो पर्याय में भव से रहित होने का उपाय क्या है, तो स्वभाव में जो भव रहितपना है उस स्वभाव को दृष्टि में लेना है, वो स्वभाव में मैंपना स्थापित करके उसमें स्थिरता करनी, ये उसका उपाय है। तो कहते अंदर भवना भाव विनानु तत्व छे, एनी दृष्टि विना भवनो अभाव त्रण काल मां नहीं थाय। बाकी उपाय तो सब करना चाहते हैं मोक्ष का नाम लेकर, दया दान व्रत भक्ति सभी सभी कुछ यात्रा वगैरह जिसको, और वो उसको चाहता क्या है, नहीं नहीं मुझे तो मोक्ष चाहिए, परंतु उपाय गलत कर रहा है, सही उपाय करे और न मिले मोक्ष, ये बात तीन काल में नहीं हो सकती, तो उसने उपाय को समझने में ही भूल कर दी है और देखा देखी इन क्रियाओं में ही वो अटक रहा है। वो तो क्रिया भी चलती रहे उसकी कोई बात नहीं है, हम ऐसा नहीं कि कोई कहता, ज्ञानी भी ऐसा नहीं कहते कि क्रिया छोड़ो और ये क्रिया करो, ऐसा नहीं उपदेश है, परंतु जो कोई पर्याय में जो कोई क्रिया भी हो रही है शुभाशुभ परिणाम तो हो ही रहे, अनादि से ही हो रहे, उसको छोड़ने करने का सवाल ही नहीं है, करना क्या है, तो कहते कि स्वभाव की दृष्टि करना है, यानी वो स्वभाव को समझ कर जान कर उसी में लीन होना है, उसी में मैंपना स्थापित करना है, कि जेमा भव नथी, स्वभाव कैसा है कि जेमा भव नथी, भवनो जेने बिल्कुल परिचय नथी, यानी इतने चारों गति में रखड़ पट्टी करके हमने देखे थे, सारे 14 जीव समास में भटक रहा है, फिर भी स्वभाव में उसका अंश तक नहीं गया, उस स्वभाव को उसका परिचय ही नहीं, ऐसा कहेंगे। यानी वहां रखड़ते हुए भी भले वो निगोद के भी पर्याय क्यों न हो, वहां पर भी स्वभाव जो परिपूर्ण है, जिसको नित्यानंद कहा है, एवं जे द्रव्य छे, द्रव्य छे कहने से वो स्वभाव की, उसको ही द्रव्य कहा, उसी को आत्मा कहा, एनी दृष्टि अने अनुभव बिना, वो एक ही समय में हो जाएगा। दृष्टि का पहले, वो पहले निर्णय तक पहुंचते पहुंचे जिस समय दृष्टि हुई उसी समय उसको ज्ञान भी हुआ, अनुभव भी हुआ, अतीन्द्रिय आनंद का अनुभव हो जाएगा। तो दृष्टि अने अनुभव बिना भव मटसे नहीं बापा, इन्हें भव के मिटाने का दूसरा कोई उपाय नहीं। आवी वात छे, आ दुनिया नी होशो अने हरख मां जिंदगी चाली जाए छे। क्या कहते हैं, ये दुनियादारी में और उसी में हर्ष विषाद के परिणाम करता रहता है, अरे मुझे ये प्राप्ति, वो हुआ, आज ऐसा हुआ, कल ऐसा हुआ, तो कहते हैं तो जिंदगी चाली जाए छे। पूरी थशे क्या जशे, 84 लाख ना मोटा उतार पड़या छे, हा हा। और यहाँ तो वो जिंदगी तो उसमें कितना कमाया कितना कमाया, ये आज ये करना है, कल वो करना है, बस इसी में चली जाती है। परंतु ये तो सब छोड़ के ही जाना है, कोई साथ में नहीं ले जाने वाला। अभी अहमदाबाद में कहा ना, ऐसी कोई फैसिलिटी होती, हर जगह कहती मैं, कोई फैसिलिटी होती ले जाने की तो क्या करते है? सब कहते यहाँ कुछ नहीं छोड़ते। ए भवना गुण विनानो हो तो भगवान, तू एकलो छो, भवना गुणों आत्मा मा नथी। भवना गुणों का अर्थ ही जो विभाव भाव है, उसको भव के कारणभूत परिणाम, उसी को भव के गुण कहा। गुण कहने से ये तो विभाव पर्याय जो है, भवना गुणों पर्याय मा छे, झीणू छे पण परम सत्य छे प्रभु, हा हा। अरे एने कोई दी सांभळ्यु नथी, सांभळीने एने विचार एटले निर्णय कर्यो नथी, अरे हूँ अँ थी क्या जईश, हा हा, भाषा केवी करी छे, ए भवगुणोना समूह थी संन्यस्त छे, भवना गुणों एटले शुभ ने अशुभ भाव, आहा हा, दयादान व्रतभक्ति काम क्रोधादय परिणाम भवना गुणों छे, ए भवना गुणों छे, ए भवना गुणोनो समूह एमा संन्यस्त छे, एने उससे वो रहित है, कौन, स्वभाव भाव। त्रिकाली से भगवान अंदर द्रव्य तो एनाथी रहित छे, यानी जब पर्याय में वो हो रहे है भाव, उसी समय द्रव्य ने स्वभाव तो उससे रहित है, ये कहना चाहते हैं। क्योंकि हम क्या कहते हैं, पर्याय में उससे कम करते 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 शुद्ध हो जाएंगे, ऐसी मान्यता सब जगह पड़ी है, इसलिए वो राग को कम करने की वो हर जगह चर्चा आती है, परंतु तो उसका उपाय नहीं, कितना भी मंद क्यों न हो जाए, जब तक यहाँ मिथ्या तो पड़ा है तो वो कुछ मंदता काम की नहीं है, और वो कायम टिकने वाली भी नहीं है, क्योंकि मिथ्या तो अवस्था में सारे भाव परावर्तन भी कर चुका है, तो शुभ भाव ही क्यों नहीं किए उसने, अशुभ क्यों किए बीच बीच में। तो कहते वस्तु जे द्रव्य तत्व छे, जे आत्म तत्व छे, देखो सात तत्व में भी जिसको हम जीव तत्व कहेंगे, आत्म तत्व छे, ए पर्याय थी रहित छे, क्यों, हमने सात तत्वों में हर एक को अलग अलग स्थान दिया है, जीव तत्व जुदा लिया है, और उसी के पर्याय में होने वाले आश्रव बंध संवर निजराम मोक्ष तक को पर्याय रूप स्थान दिए, वो जुदे है, तो जुदे है तभी तो सात भिन्न भिन्न बने ना, अजीव तत्व तो जुदा ही है, परंतु जीव तत्व में भी या अजीव तत्व में भी आश्रव बंध वो कर्म में ले लिए है, परंतु जीव के अपने बातों भावों की बात करेंगे तो उसका जो स्वभाव भाव वो आत्म तत्व जीव तत्व है, और उसके पर्याय वाले भाव वो सारे आश्रव बंध समनिजरा मोक्ष, वो उससे जुदे है, ये बात कहना चाहते। तो कहते वस्तु जे द्रव्य तत्व छे, आत्म तत्व छे, ए पर्याय थी रहित छे, माटे पर्याय मा गुण छे अंदर मा नथी। समझ में आई ना बात, अब कहेंगे पर्याय थी रहित, पर्याय थी रहित, हाँ वो तत्व की बात हो रही है, जब वस्तु कहेंगे द्रव्य गुण पर्यायात्मक वस्तु, गुण पर्यायवत द्रव्यम, उसकी बात यहाँ नहीं हो रही है, उस द्रव्य से पर्याय कभी रहित नहीं होगी, परंतु यहाँ अखंड जो वस्तु जो है, कौन सी, गुण पर्यायात्मक जो है, उसमें जो स्वभाव भाव और पर्याय, इस तरह से हम उसके अगर दो भेद करेंगे तो उसमें जो यह हमने देखे ना, वस्तु जे द्रव्य तत्व छे, आत्म तत्व छे, ए पर्याय थी रही छे, माटे पर्याय मा गुण छे, अंदर मा नथी। वो तो द्रव्य में जो गुणों का समूह द्रव्य, उसकी उस गुणों की बात नहीं है। पर्याय मा गुण यानी जो विभाव चल रहा है वो द्रव्य में नहीं है। एना घरनी वात सांभळवा मळे नहीं, सांभळवा मळे तो ऊपर थी काढ़ी नाखे, क्या कहा, किसी को सुनने में आएंगे है करके निकाल देता है, क्योंकि उसको स्वीकार ही नहीं है उसका। थई रही केटलो श्लोक सरस छे, नवमो श्लोक 209। ओहो हो, आ रीते जे भवगुणोना समूहती संन्यस्त छे, अर्थात जे शुभ शुभ राग द्वेष वगैरह भवना गुणों थी विभावों थी रहित छे, वो पहला सहित छपा था ना, वो तो गलत था, ये रहित बराबर है। प्रभु अंदर, भगवान आत्मा, त्रिकाली सनातन सत्य, ये तो भवना गुण थी रहित छे। भवना रखड़वाना गुण ये तो पर्याय मा अवस्था मा छे, छे की बात है, वो है परंतु स्वभाव में वो नहीं है। पलटती बदलती दशा मा छे, नहीं पलटतु ध्रुव जे त्रिकाण छे एमा ए नथी। पलटने वाले अंश में है, कायम रहने वाला जो है त्रिकाली स्वभाव उसमें वो नहीं है। एक बार तो सांभळीने ठरी जाए एवुं छे, आहा हा आवी वात छे, आ तो अपने तो व्याख्यान मा घणी वार वंचाई गयुं छे। जे शुभ अशुभ राग द्वेष वगैरह भवना गुणों थी एटले विभावों थी रहित छे, तेने एवो जे भगवान नित्य द्रव्य तेने जेमा भवना गुणोनो अभाव छे, तेने जेने भवनो परिचय नथी, तेने हा द्रव्य ने नित्य शुद्ध आत्मा ने, उसको तेने कहा। एटले कोण? नित्य शुद्ध आत्मा ने, यानी जो त्रिकाल जो ध्रुव स्वभाव भाव है तेने, एटले नित्य शुद्ध आत्मा एने हूँ स्थवुं छू। मुनिराज कहे छे के हूँ तो एने स्थवुं छू। वो पर्याय में मैं ऐसा करता हूँ, 28 मूल गुण पालता हूँ मैं, शुभ भाव कोई वो बात नहीं है, तो मैं उसको नित्य स्तवुं छू। हूँ कोई भगवान की स्तुति बुति ने स्तवतो नथी। आहा हा, देखो उनके पर्याय में वो भाव छठे गुण स्थान में है, जब लिख रहे तो उनके भी भक्ति के भाव वो सब हो रहे, तो उस समय भी क्या कह रहे, उस समय भी वो जो दृष्टि कायम है तो मैं उसको स्तवुं छू, ऐसा कहा उन्होंने। देखो उपयोग आत्मा में से यानी शुद्धोपयोग में से शुभ शुभोपयोग, मुनि की अपेक्षा शुभोपयोग कहेंगे हम, फिर भी वो दृष्टि तो सतत कायम रहे, प्रतीति में कोई अंतर नहीं आता है। इसलिए क्या कहा कि इन्हें हूँ स्तवुं छू। पेज नंबर 121, भवना जे गुणों छे तेने हूँ स्तवतो नथी, एटले तेनी हूँ प्रशंसा करतो नथी, यानी उसमें आदर बुद्धि नहीं है। जे शुभभाव हो रहे मुनियों को उसमें उनके बिल्कुल आदर बुद्धि नहीं है कि अरे देखो मैंने ये किया ये करने जैसा, ऐसे बिल्कुल नहीं। आवो जे नित्य शुद्ध आत्मा छे अस्थिपने छे, यानी वो बस ऐसी बात नहीं है, बस वो है वहां पर सत्तापने छे, होवापने अनादि अनंत छे, यानी हर समय विद्यमान है। हमारी कोई भी पर्याय क्यों न चल रही हो, वो पूरा का पूरा जो है ध्रुव परिपूर्ण है, नित्यानंद स्वरूप है, उसमें कोई कमी नहीं है, एक स्वरूप विद्यमान है। एवी होवापना वाली चीज जे पलटन विना नी, क्योंकि उसमें पलटन नहीं है, पलटन तो पर्याय में हो रहा है। एवी पलटन विना नी, पलटती पर्याय में तो भवना भाव छे, परंतु ये जो कायम चीज जो है स्वभाव भाव, उसमें ना भव है ना भव के भाव है। एनाथी रहिते वो जे नित्य शुद्ध आत्मा तेने हूँ स्तवुं छू, यानी वो नित्य शुद्ध आत्मा में मैं पना स्थापित किया, उसी में एकाग्र हुआ, तो उसको कहेंगे उसको मैं स्तवुं छू। तेना हूँ गुणगान करू छू, तेनु स्तवन करू छू। हा हा, भारी श्लोक आयो। 209મો ભારે શ્લોક છે. હા હા, થોડામાં પણ ઘણું ભર્યું, એ 209 શ્લોક પૂરો થયો. અભી 210મો શ્લોક પડેંગે. દેખાય કે ઉસકો આપને? પૂરા મોહ હૈ ક્યુંકિ અગરસેના વાલી બાત હૈ ના, વો ઉપર હૈ જરા દેના નિયમસાર, રાઇટ સે રાઇટ. હા, ઇદમ ઇદમ મ ચાહીએ, ઇદમ ઇદમ અઘ સેના, તો મ ઓર અ કા મિલકર મ પૂરા હોતા હૈ, દ કે બાદ મ ડાલના પૂરા, દ કે બાદ ઇદમ ઇદમ, ઇદમ ઇદમ ઘ સેના વૈજયંતિમ હરેતામ સ્ફુટિત સહજ તેજ પુંજ દૂરી કૃતામ હ. હ કે બાદ ફિર આગે ડેશ ક્યુ દી ઉન્હોને? વો ડેશ વિસર્ગ કે બાદ જો લિખા હૈ વો નિકાલ દેના, કેવલ વિસર્ગ રખના. પ્રબલ તરતમસ્તોમમ, પ્રબલ તરતમસ્તોમમ સદા શુદ્ધ શુદ્ધમ જયતિ જગતિ નિત્યમ ચિત ચમત્કાર માત્રમ. બરોબર. હા હા, હ કે બાદ વો ડેશ નિકાલની હૈ, નીચે ભી ઉપર. હા, વો તો દેતે હૈ ના, ક્યુંકિ વો પૂરા મિલકર એક ચરણ હુઆ, દો લાઇન કા એક ચરણ ફિર દૂસરા ચરણ, વો તો બરાબર હૈ. વો ઉપર ઓર નીચે દોનો જગહ મ ડાલના ઓર વો વિસર્ગ કા આદિ વાલા આગે કા સાઇન નિકાલ દેના. પડતે ભી ઇદમ ઇદમ અઘ સેના વૈજયંતિમ તરેતામ સ્ફુટિત સહજ તેજ પુંજ દૂરી કૃતામ હ પ્રબલ તરતમસ્તોમમ સદા શુદ્ધ શુદ્ધમ જયતિ જગતિ નિત્યમ ચિત ચમત્કાર માત્રમ. દેખો ઇસકા શ્લોકાર દેખતે હૈ, સદા શુદ્ધ શુદ્ધ, દો બાર શુદ્ધ કહા હે ના, તો સદા શુદ્ધ શુદ્ધ એવું આ પ્રત્યક્ષ, દેખો વો સાક્ષાત હૈ, પ્રત્યક્ષ હૈ, એસા નહીં કે વો કોઈ ઇમેજિનરી બાત નહીં હૈ, કે તે સદા શુદ્ધ શુદ્ધ એવું આ પ્રત્યક્ષ ચૈતન્ય ચમત્કાર માત્ર તત્વ. તો બાકી તો દુનિયા કે ચમત્કાર ભાષિત હો રહે હૈ, તો સબસે બડા ચમત્કાર તો યે હૈ ચૈતન્ય ચમત્કાર માત્ર તત્વ જગતમાં નિત્ય જયવંત છે, કાયમ હૈ વો, સદા વિદ્યમાન ભી ઉસકો જયવંત કહા, કે જેને પ્રકટ થયેલા સહજ તેજપુંજ વડે સ્વધર્મ ત્યાગરૂપ એટલે મોહરૂપ અતિ પ્રબળ તિમિર સમૂહને દૂર કર્યો છે, અને જે પેલી અઘસેનાની ધજાને હરી લે છે. અઘ કા અર્થ હોતે પાપ, દોષ. નીચે લિખા હૈ, અભી હમ કલ પઢેંગે વો પ્રવચન, અભી તો યહીં રુકતે હૈ. ચાવાણી કે જ્ઞાન તે સૂઝે લો કાલો સોવાણી માં સપનમ સદા હેત હો. અરવિંદ ભાઈ.